आज हम चर्चा करेंगे धर्म क्या है, धर्म रिलीजियन संप्रदाय पूजा पद्धति और जो आध्यात्मिकता और स्पिरिचुअलिटी, क्या ये सब एक ही चीज है या ये बिल्कुल अलग-अलग हैं, या ये अलग-अलग हैं पर इनके आपस में कोई इंटरैक्शन है। जो भी धारण करता है, अपहोल्ड्स करता है, सस्टेन करने में हेल्प करता है, उसे हम धर्म कहते हैं। जैसे कि महाभारत के कर्ण पर्व में कहा, धारणा धर्म इत्याहुर धर्मो धारयते प्रजाः, यस्या धारणा संयोक्तम सधर्म इति निश्चयः। कहते कि जो भी तत्व सस्टेन करने में या सस्टेनर है, अपहोल्डर है, वो सब धर्म है। तो ये पूरे ब्रह्मांड में, कॉस्मस में जो भी एलिमेंट्स इस यूनिवर्स को सस्टेन करने में हेल्प करते हैं, या हमारे लाइफ में जो हमारा व्यवहार है, जो हमारे कंडक्ट से कैरेक्टर है, ऐसा कंडक्ट या ऐसा बिहेवियर, ऐसा व्यवहार या आचरण जो हमारे सस्टेनेंस के लिए, हमारी एग्जिस्टेंस के लिए हेल्पफुल होते हैं। और जब कहते हैं कि हमारे, आप अकेले जी नहीं सकते या मैं अकेले जी नहीं सकता, मेरा एग्जिस्टेंस भी और बहुत सारे चीजों के हेल्दी एग्जिस्टेंस पर डिपेंड करता है। मुझे हवा चाहिए, पानी चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, आग चाहिए, आकाश चाहिए, धरती चाहिए, नेचर के हर वो चीजें चाहिए मुझे सराउंड, क्योंकि मैं एक सोशल एनिमल हूं। मुझे एक फैमिली चाहिए, एक सोसाइटी चाहिए, एक गवर्नमेंट चाहिए, एक नेशन चाहिए, रूल्स चाहिए, रेगुलेशंस चाहिए, ये सब चीजें होता है। फेयरनेस चाहिए, जिसके बेस पर मैं एक सुखी जीवन जी सकता हूं। नहीं तो मेरे लिए सिर्फ जिंदा रहना भी मुश्किल हो जाएगा अगर मेरे सराउंडिंग में लोग ना हो, सोसाइटी ना हो, फैमिली ना हो और बहुत कुछ ना हो। तो इसका मतलब है कि मुझे जिंदा रहने के लिए और खुश रहने के लिए मेरे व्यवहार में वो जो एलिमेंट्स हैं जो मुझे खुश रखने के लिए या जिंदा रखने के लिए हेल्प करते हैं, वो धर्म है। और अगेन, जब मैं कहता हूं कि मुझे खुश रखने के लिए या मुझे जिंदा रखने के लिए, तो वो सिर्फ मैं अकेला नहीं होता हूं, पूरा इकोसिस्टम होता है। तो मेरा वो व्यवहार जो पूरे इकोसिस्टम को ठीक रखने के लिए काम में आता है, वो धर्म है। और उसका जो अपोजिट है, जो बैलेंस को बिगाड़ता है, हार्मोनी को नुकसान करता है, मेरे एग्जिस्टेंस को या दूसरे के एग्जिस्टेंस पर नष्ट करने के लिए काम करता है, ऐसा व्यवहार अधर्म है। तो इसी इसी धर्म की व्याख्या पर अगर हम देखें तो शास्त्र में हम आपको तीन तरह की धर्म का जो स्वरूप है वो आपको तीन तरह के रूप में देखने को मिलेगा। एक कॉस्मिक लेवल पर, यूनिवर्स के लेवल पर, जिसे हमारे वैदिक शास्त्र कहते हैं रितम। रितम का अर्थ होता है ऐसा नेचुरल लॉ जो इटर्नल है, एवरलास्टिंग है, कभी ना उसका कोई अंत होता है ना कोई बिगिनिंग होता है। वो ऐसा कॉस्मिक प्रिंसिपल है जो पूरे यूनिवर्स के हर सिस्टम को, हर शेयर होल्डर को कोऑर्डिनेट करता है और उनको रेगुलेट करता है विद इन इट। खाली इतना नहीं, उनको सर्वाइव करने के लिए जो भी उनके अंदर, या स्टेबिलिटी के लिए, एक दूसरे से हार्मोनी रखने के लिए जो भी चीजों की जरूरत है, वो जो रूल्स या रेगुलेशंस हैं, उसे हम रितम कहते हैं। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो भी साइंस या टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट होता है वो उस रितम के बेस्ड पर होता है। जब तक हम एक पर्टिकुलर नेचर के किसी एलिमेंट के उसकी प्रॉपर्टीज को, उसकी नेचर को ठीक से ना समझें, तो हम उसके बेस पर किसी भी टेक्नोलॉजी को डेवलप नहीं कर सकते। जैसे सपोज आप थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन है, तो जब जब आपने समझा कि ये एक नेचर का लॉ है, एक कॉस्मिक रूल है कि हर चीज में ग्रेविटेशन होता है, और उस ग्रेविटेशन के बेस पर आपने अपने रिसर्च किया कौन सा चीज को कब यूज करने पर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से हम चल सकते हैं। इसी तरह हर थिंग का, कोई भी वस्तु हो, उसकी जो नेचर है या उसकी जो नेचुरल प्रॉपर्टीज हैं, उसको भी हमारे यहां धर्म कहते हैं। जैसे लोहा का धर्म है कि वो बहुत हार्ड है, उसका कलर एक पर्टिकुलर उसका कलर है, वो एक पर्टिकुलर वे में बेंट होता है, एक पर्टिकुलर हीट में वो पिघलता है या नहीं पिघलता है, ये सब लोहे का गुण है। जब आपको ये पता चलता है, पर उसी बेस पर आप लोहे को अपने काम में लाते हैं। अगर ये रूल्स या वो नेचर में बार बार फ्लेक्सिबिलिटी हो, अगर उसमें फ्लक्चुएशंस हो, तो फिर ये बड़ा मुश्किल है कोई इंजीनियरिंग या साइंस की काम आगे बढ़ाने की। तो हमें पहले पता होता है कि मिट्टी का ये धर्म है, पानी का ये धर्म है, अग्नि का ये धर्म है, वायु का ये धर्म है, लोहे का ये धर्म है, सोने का ये धर्म है, हर जो भी मैटेरियल वर्ल्ड में कोई भी मैटेरियल चीजें हैं, वो मैटर के फॉर्म में हो, एनर्जी के फॉर्म हो, गैस के फॉर्म में हो, लिक्विड के फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में, उनके जो पर्टिकुलर नेचर है उसे भी धर्म कहते हैं। तो वो जो कॉस्मिक रूल्स है उसको वैदिक भाषा में धर्म का उस स्वरूप को रितम कहा, जो इटर्नल रूल्स है जिनके बिना ये दुनिया नहीं चल सकती है। और थोड़ा हम लोकल लेवल पर आए, थोड़ा नीचे के लेवल पर आए, तो हम देखते हैं सोशल ऑर्डर पर आए। एज ए ह्यूमन बीइंग जब हम एक सोसाइटी में रहते हैं, क्योंकि इंसान अकेले तो जी नहीं सकता, उसको सोसाइटी में रहना पड़ेगा, वो जो सोशल ऑर्डर है वो ऑर्डर कैसे होता है, एक कलेक्शन ऑफ लॉज हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, जो कि किसी भी सोसाइटी को अपहेल्ड करने के लिए या सस्टेन करने के लिए, अपलिफ्ट करने के लिए जरूरी होता है। जैसे कि किसी भी देश में आप रहते हैं, वहां की जो कानून है, जो लॉज है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जिस सिटी में आप रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, वहां एक पर्टिकुलर वे ऑफ लाइफस्टाइल है, वे ऑफ थिंकिंग है, वो आपको फॉलो करना पड़ता है, वो वहां का धर्म है। क्यों? वो चीजें बनाए गए हैं, या तो वो बहुत पुराने हैं या अपडेटेड होते रहते हैं, नए होते रहते हैं, क्योंकि उस इकोसिस्टम के लिए, उस देश के लिए वो रूल्स रेगुलेशंस सोसाइटी को सर्वाइव करने के लिए जरूरी है। इसीलिए ये जो सोशल रूल्स या रेगुलेशंस होते हैं, ये हर देश के अलग होते हैं, खाली देश के नहीं, इवन एक देश में भी अलग अलग प्लेसेस के अलग होते हैं। इवन आप भारत में हैं तो लद्दाख का में आपको कैसे जीना है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा, वहां की जो भी लोकल ट्रेडिशन है, लोकल चीजें, वहां के इकोसिस्टम के हिसाब से। अगर आप ऐसा नहीं जीते हैं, आप दिल्ली स्टाइल में जीते हैं या न्यूयॉर्क स्टाइल में जीते हैं, तो आप अधर्म करते हैं, क्योंकि वहां के पूरे सिस्टम को आपका व्यवहार खराब करता है। जो आपका व्यवहार हो सकता है बड़ी सिटी में वो सही हो, पर किसी पहाड़ी एरिया में जहां का इकोसिस्टम अलग है, या किसी ग्लेशियर एरिया में जहां का इकोसिस्टम अलग है, आपका वो धर्म वहां अधर्म बन जाता है। इसीलिए हर सोसाइटी में एक पर्टिकुलर बंच ऑफ रूल्स रेगुलेशंस बने होते हैं, उसे भी हम धर्म कहते हैं। प्राचीन भारत में हम उसे वर्णाश्रम व्यवस्था, वर्णाश्रम धर्म से लेकर राजधर्म और अलग अलग चीजों के धर्म के रूप में जानते हैं। तो जीवन में और एक धर्म की व्यवस्था होती है, उसको कहते हैं हमारा जो इंडिविजुअल बिहेवियर है, और जो वो बिहेवियर जो एथिक बेस्ड होते हैं, वैल्यूज, जो हमारी ड्यूटीज है, जो राइटसनेस है हमारे काम में, एक्शन में, जो मोरलिटी है, वो भी धर्म का एक तीसरा अंग होता है। मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या मेरे लिए प्रतिबंध है, क्या नहीं है। तो वो जन्म से मरण तक वो व्यवहार, जो ऐसा व्यवहार जो मेरे एग्जिस्टेंस के लिए या दूसरों के एग्जिस्टेंस के लिए खतरा बने, वो अधर्म है। और जो सही है वो धर्म है। वैदिक हिंदू दर्शन शास्त्रों में जो छह तरह के दर्शन शास्त्र हैं, एक है वैशेषिक दर्शन, उसके प्रणेता फाउंडर जो है वो ऋषि कणाद हैं। तो ऋषि कणाद वैशेषिक सूत्र अपने बुक में पहले सूत्र में लिखते हैं, धर्म को डिफाइन करते हैं। यतो भ्युदय निश्रयसो सिद्धि सधर्म। जिस व्यवहार के द्वारा हम अभ्युदय और निश्रेयस दोनों की प्राप्ति कर सकें, वो व्यवहार वो आचरण धर्म है। ध्यान रखिए, धर्म का संबंध जब इंसान तक आता है तो वो व्यवहार से लिमिटेड होता है। तो महर्षि कणाद कहते हैं, आपका वो व्यवहार या चरित्र या आचरण जिसे आप इस जीवन में भी अभ्युदय को प्राप्त करें, अभ्युदय मतलब हर तरह से आप उदय करें, राइज करें, आपका ज्ञान बढ़े, धन बढ़े, सुख बढ़े, आरोग्य बढ़े, जो भी लाइफ में आप एक्सपेक्ट करते हैं खुश होने के लिए, वो सब आपको मिले। किससे मिले? अपने व्यवहार से। ऐसा व्यवहार जिससे आपको हर तरह से उन्नति की प्राप्ति हो, और सिर्फ इतना नहीं, मरने के बाद भी आपको निश्रेयस की वो जो परम आनंद है, जो सुप्रीम गोल होता है एक ह्यूमन बीइंग की, एब्सोल्यूट फ्रीडम फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ सफरिंग्स पेन्स, तो उससे जो एब्सोल्यूट फ्रीडम है जिसे हम निश्रेयस कहते हैं, परमानंद कहते हैं, उस परमानंद की प्राप्ति का भी साधन यही धर्म होता है। तो अगेन, धर्म हमारा व्यवहार से रिलेटेड चीजें होती हैं। तो ये तो हुआ धर्म का एक ब्रॉडर लक्षण, कॉस्मिक से लेकर इंडिविजुअल मेरे तक, मेरा जो व्यवहार सही हो, सिंपल भाषा में कहें अच्छा हो, मेरे और दूसरों के सस्टेनेंस के लिए हेल्पफुल हो, वो धर्म है। नहीं है तो उसका अपोजिट है। इसको थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस में लाने के दृष्टि से, प्रैक्टिकली समझने के लिए मनुस्मृति का एक श्लोक समझने की जरूरत है। मनुस्मृति का ये श्लोक कहता है, धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। कहते हैं कि दीज आर 10 प्रिंसिपल्स आर इंडिकेटिव साइंस ऑफ धर्म। किसी शास्त्र में 10 है, कहीं 12 है, कहीं 8 हो सकता है, 15 भी हो सकता है, आप भी एक आधा चाहे तो जोड़ सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। पर बेसिकली मनुस्मृति का ये 10 चीजों को समझने की जरूरत है, धर्म क्या है समझने में आसानी होगी। कहते हैं धृति, धैर्य रखना, पेशेंस रखना, ये धर्म है, सस्टेनर है, आपको लाइफ को सस्टेन करने में और सोसाइटी को हेल्प करता है। सपोज कि हम सब 24 घंटे के लिए इम्पेशेंट हो जाएंगे, कोई भी आदमी पेशेंस नहीं दिखाएगा, छोटी छोटी चीजों में हम ओवर रिएक्ट करेंगे, गलतियों को माफ नहीं करेंगे, किसी भी हद तक जाएंगे। कल्पना करिए, जब 700 करोड़ पॉपुलेशन है इस प्लानेट की, या किसी भी अलग अलग देश की जितने भी पॉपुलेशन है, रूल बनाते हैं हमारे देश में सब लोग 24 घंटे के लिए, हम धैर्य छोड़ते, अर्थ में कि हर आदमी धैर्य दिखा रहा है तभी हम सस्टेन करते, ऐसा नहीं है। पर हर व्यक्ति किसी ना किसी लेवल तक, किसी ना किसी क्वांटिटी तक वो धैर्य दिखाता है, तभी हम खुद सरवाइव करते हैं और ये सोसाइटी बचा हुआ है। जिसके अंदर जितना ज्यादा पेशेंस लेवल कम होगा, उसका जो जीवन, जो लाइफ स्पैन है वो उतना कम होगा। और जिस सोसाइटी में लोग जितने कम पेशेंस रखने वाले मिलेंगे, वो सोसाइटी इतना करप्ट होगा, इतना खराब होगा, वहां रूल रेगुलेशन में खराब होगा। इसी तरह क्षमा, माफ करना दूसरे की गलतियों को, एरर्स को, मिस्टेक्स को आप क्षमा कर देते हैं। आप कहेंगे छोटी सी बात है, नहीं। सपोज आपकी फैमिली में आज एक रूल बनाते हैं कि 24 घंटे के लिए हम कोई किसी को क्षमा नहीं करेंगे, कोई भी गलती हो नहीं करने वाले। फिर देखिए क्या होता है, एक बर्तन भी हाथ से गिर जाए तो घर में तूफान खड़ा हो जाएगा, छोटी छोटी चीजों पर लड़ाइयां शुरू हो जाएंगी। और जिन घरों में एक दूसरे को क्षमा करने की कल्चर नहीं है, उस घर में क्या होता है हमें पता है, बंदरों के सोसाइटी से भी बदतर हालत होता है ऐसे घरों में। और जहां जितना एक दूसरे को क्षमा देने की कल्चर बना हुआ है वहां शांति है। इसी तरह आप किसी कॉरपोरेट फील्ड में काम करते हैं, गवर्नमेंट में, सोसाइटी में है, किसी स्टोर में है, कहीं भी जाएं, अगर हम किसी ना किसी लेवल तक क्षमा रखते हैं, इसीलिए सोसाइटी सर्वाइव करता है और हम भी सर्वाइव करते हैं। क्षमा का एक बड़ा इंटरेस्टिंग रीजन भी है। क्षमा इसीलिए नहीं करते हैं कि सामने वाले ने गलत किया और हमने उसको माफ किया और हम बड़े हो गए, सामने वाला छोटा हो गया, ऐसा नहीं है। क्षमा हमारे सर्वाइवल के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप दूसरे को क्षमा करते हो तो ये एक्सेप्ट करते हो कि मेरे में भी गलतियां होती हैं, मेरे में भी मिस्टेक्स हो सकते हैं, मुझसे भी एरर्स हो सकते हैं, मुझे भी माफी की जरूरत है, मैं भी डिजर्व नहीं करता हूं हर चीज में पनिश्ड रहूं बनूं। जब आप दूसरे को क्षमा करते हो आप अपने आप को उस जगह पर लाते हो कि कल मेरे से भी ऐसी कोई गलती होगी, मैं भी क्षमा का योग्य बनूंगा। तो तभी हम एक दूसरे को की छोटी गलतियों को, छोटी हो बड़ियों को माफ करते हुए ही एक खूबसूरत सोसाइटी बना सकते हैं। धृति, क्षमा, दमा, अपने माइंड को कंट्रोल करना है ना। हमारा मन तो भागता रहता है हर जगह। मन एव मनुष्याणम बंधनम कारणम बंधमोक्षयोः। आप किसी चीज से अटैच्ड हैं, फ्री हैं, इट्स ऑल अबाउट माइंड। जितने लोग बीमार हैं वो मन के कारण है, नहीं है तो मन के कारण है। क्यों? आपका मन करता है मैं एक पर्टिकुलर चीज खाऊं, पर डॉक्टर कहता है आपको नहीं खाना, आपको डायबिटीज है, आपको मीठा नहीं खाना, पर आपका मन करता है मैं खाऊं, तो आप मन को रोकते हैं, दमन करते हैं। वो मन को दमन करना आपके सर्वाइवल के लिए जरूरी है। और अगर ये आपकी प्रैक्टिस में नहीं है, नेचर में नहीं है मन को कंट्रोल करना, तो आप अपने आप को, अपनी मौत को बुलावा देते हैं, बीमारी को बुलावा देते हैं। तो ये सोसाइटी जो जिंदा है, वो चल रहा है, हर सोसाइटी की अपनी अपनी अलग अलग लेवल में चल रहा है, कहां बहुत खूबसूरत तरीके से चलता है, बहुत खुश सोसाइटी है, सुखी सोसाइटी है, कहीं दुखी सोसाइटी है, एवरेज है, डिपेंड्स ऑन कि वहां के लोग कितने मन पर कंट्रोल रखते हैं। इसी तरह इंद्रिय निग्रह, हमारे जो सेंसेस है, इंद्रियां हैं, आंख, कान, नाक वगैरह, इनकी भी अपनी डिमांड्स है, अपनी विशेष है, उनको कंट्रोल करना पड़ता है। अब आजकल आपको मन करे कि मुझे आइसक्रीम खाना है, मुझे स्टोर में जाना है, मुझे रेस्टोरेंट में खाना खाना है, घूमने जाना है, मेरा मन करता है, मेरा जीव बहुत दिन हो गया घर में रहते रहते थक चुका हूं, मुझे कुछ खाना पीना है, तो आप बाहर निकल जाएंगे तो बीमारी लेकर आ भी सकते हैं, दूसरे को बांट भी सकते हैं। तो इंद्रिय निग्रह जरूरी है डे टू डे लाइफ में, और हम करते हैं, हर व्यक्ति किसी ना किसी लेवल तक ये सारे धर्मों का पालन करता है। उसका सबसे बड़ा उसका प्रमाण है कि वो जिंदा है। पर कितना जिंदा है, कितना खुश है, कितना दुखी है, डिपेंड करता है कि कितना धर्म का पालन करता है। धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह। शौच मन की सफाई, शरीर की सफाई। अस्तेय चोरी ना करना, मतलब यहां चोरी ना करने का अर्थ किसी के घर का चोरी नहीं, ऑनेस्टी की पालन करना, डिसऑनेस्ट नहीं होना। इंद्रिय ने धीर विद्या, अपने इंटेलेक्ट को, अपने विजडम को शार्पन करते रहना, मास्ते रहना, बढ़ाते रहना, विद्या लर्निंग सीखते रहना, सीखते रहना, ये सब धर्म है। अगर आपने आपकी विजडम को आपने डेवलप नहीं किया, विजडम क्या होता है, बुद्धि का क्या काम होता है, धी का, डिस्क्रिमिनेटिव पावर है जो डिस्क्रिमिनेट करता है, अलग करता है, ये सही है ये गलत है, आपको चुनने की शक्ति देती है, देता है कि ये सही है या गलत है, ये खाऊं ये न खाऊं, ये जाऊं न जाऊं, खेलूं न खेलूं, करूं न करूं, ये जो डिसीजन आप करते हैं विजडम के बेस पर करते हैं। जिसकी विजडम जितना ज्यादा शार्पन होगा, जितना ज्यादा अच्छी होगी, उसका डिसीजन उतना परफेक्ट, उतना ज्यादा अच्छा होगा, परफेक्ट होगा। इसीलिए करने की क्या जरूरत है, ईश्वर ने जो हमें पैदा होने के साथ भी बुद्धि दी है, उस बुद्धि को हम बढ़ाते रहें। कैसे बढ़ाएं? पढ़ने से, लिखने से, सुनने से, समझने से, ऑब्जर्व करने से, एक्सप्लोर करने से हम अपनी बुद्धि को बढ़ाते रहेंगे। जितनी विद्या बढ़ेगी, सूचनाएं बढ़ेंगी, हमारी बुद्धि में विकास उतना होगा। पर विद्या इसलिए पढ़ते रहना चाहिए, पढ़ना, ना पढ़ना भी अधर्म है देवियों से, ना पढ़ना अधर्म है, ना सीखना अधर्म है। जिसने भी लाइफ में किसी भी स्टेज में सीखने का प्रोसेस को स्टॉप कर दिया है, वो अपनी बर्बादी ला लिया है। लोग हम देखते हैं 80 साल के लोग भी, 90 साल के लोग भी दुनिया के साथ अपडेटेड होते रहते हैं। स्मार्टफोन का जमाना है आजकल, टेक्नोलॉजी का जमाना है। हम देखते हैं बहुत सारे बुजुर्ग लोग भी स्मार्टफोन को यूज करते हैं, बड़े आसानी से करते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इवन 60s और 70s में और होते रहते हैं, ये तो मुझे आता नहीं, मुझे ये नहीं आता, मुझे ये नहीं खोलना आता। तो उसका रिजल्ट क्या होता है, मुझे इंटरनेट करना नहीं आता है, मुझे ऑनलाइन नहीं करना आता। होता क्या है, दुनिया आगे बढ़ जाती है, आप रोते रहते हैं, दुखी रहते हैं, बहुत सारी चीजें जो आसानी से हो सकता है आप नहीं कर पाते। इसीलिए हमारे शास्त्र स्वाध्याय पर जोर देते हैं, स्वाध्याय सेल्फ स्टडी, पढ़ते रहो, कुछ ना कुछ सीखो 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 सीखो। लाइफ में जब भी आपने लिखना पढ़ना सीखना बंद कर दिया, एक तो अधर्म आपने पाला ही पाला, धर्म से हटा, जिसका नुकसान आपको मिलता है। अक्रोध और गुस्सा ना करना, गुस्सा करने से क्या होता है वो सबको पता, खुद को कितना नुकसान, दूसरों को कितना नुकसान, हर आदमी गुस्सा करे तो कितना होगा। तो मनु ने एक ओवरऑल आइडिया दिया, ये 10 सिम्टम्स हैं, ये 10 साइंस हैं एक धर्म धार्मिक व्यक्ति का, इनको पालन करोगे तो तुम अपने लाइफ को भी सस्टेन करने में हेल्प करता है, ये दूसरों के लिए भी ये आपको हेल्प करता है। वह जो धर्म है जिसको हमने अभी समझने की कोशिश की, वो व्यवहार के लेवल पर 3 तरह से क्लासिफाई किया जाता है। स्पेशली शुरुआत में हम 2 तरह के समझने की कोशिश करेंगे, सामान्य धर्म या जिसको हमारे यहां सनातन धर्म कहते हैं या यूनिवर्सल धर्म, और एक होता है विशेष धर्म या जो स्पेसिफिक धर्म है, एक इंडिविजुअल के स्पेसिफिक टाइम और प्लेस के हिसाब से अलग अलग धर्म होता है। सामान्य धर्म क्या है, ऐसे रूल्स रेगुलेशंस जो किसी भी प्लेस टाइम पर्सन और सर्कमस्टांसेस में आप चेंज नहीं कर सकते। ऑनेस्ट होने के लिए आपको, डिसऑनेस्ट होने के लिए कोई भी एक्सक्यूजेस मंजूर नहीं है। आप अफ्रीका में रहते हैं या भारत में रहते हैं, यूरोप में रहते हैं या साउथ अमेरिका में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं या ईस्ट एशिया में रहते हैं, आप कहीं भी रहते हैं, आप गरीब हैं या धनी हैं, आप हॉस्पिटल में बीमार हैं या बड़े खुश हैं, जिम में एक्सरसाइज कर रहे हैं, किसी भी हालत में ऑनेस्टी नहीं छोड़ने का, क्षमा ना छोड़ने का, सीखने की प्रवृत्ति नहीं त्यागने का, बच्चा है बूढ़ा है, ये सनातन धर्म है, हर किसी को हमेशा पालन करने की जरूरत है। इसको कहते हैं हम सामान्य धर्म, यूनिवर्सल। उसमें आप ये नहीं कहेंगे कि मैं पर्टिकुलर एज का हूं मुझे मेरे लिए नहीं, मैं पर्टिकुलर प्लेस का हूं मेरे लिए नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये सब सस्टेनर है। दूसरा होता है जो विशेष धर्म, एक स्पेसिफिक व्यक्ति के लिए एक स्पेसिफिक परिस्थिति में उसको फॉलो करना होता है, और हर इंडिविजुअल का एक सिंगल इंडिविजुअल व्यक्ति डिफरेंट टाइम में और डिफरेंट प्लेसेस पर, डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस में, डिफरेंट एज में अलग अलग तरह से उसका व्यवहार रिकमेंडेड होता है और एक्सपेक्टेड होता है। वो धर्म आप हमेशा हर जगह एक जैसा नहीं कर सकते, उसे हम कहते हैं विशेष धर्म। सपोज एक व्यक्ति, हम सब अपने जीवन में सैकड़ों तरह के रोल्स निभाते हैं। मैं किसी का बेटा या बेटी हूं अपने मां बाप के, तो मैं अपने मां बाप के लिए बेटा बेटी हूं, तो उनके साथ जो मेरी डीलिंग है उस समय मुझे अपना पुत्र धर्म या पुत्री धर्म, पुत्र धर्म कहने से दोनों आ जाता है वैसे, पर आजकल वो संस्कृत न जानने से लोग पुत्र को भी बेटा और पुत्री को बेटी समझने लग जाते हैं, पर वैदिक भाषा में पुत्र को हो पुत्री को पूरे संतान को, तो संतान धर्म है वो निभाना पड़ता है। संतान धर्म क्या है? जो भी रिक्वायर्ड है, अपने पेरेंट्स को रेस्पेक्ट करो, उनकी बातें सुनो, उनका ख्याल रखो, उनकी सेवा करो, उनको टाइम दो। पर वही मैं शादीशुदा हूं, मेरे पत्नी है या पति है, मुझे अपने स्पाउस के लिए जो व्यवहार है वो मैं पेरेंट्स के साथ तो ऐसा व्यवहार नहीं कर सकता। मेरे पति या पत्नी के साथ मेरा जो जो ड्यूटीज है, जो मुझे करना है, वो अलग है, क्योंकि पर्सन अलग हो गया, तो इसीलिए मेरा धर्म वहां बदल जाता है। आज पेरेंट्स, जब मैं किसी बच्चे का मां बाप हूं, तो मेरा दूसरा कर्तव्य, दूसरा धर्म बन जाता है। तो आप कह सकते हैं ऐसी ड्यूटीज तो टाइम, प्लेस और सिचुएशन के हिसाब से डिफाइंड होता है। आप हर किसी के साथ मां बाप की तरह ट्रीट नहीं कर सकते, आप हर किसी के साथ हस्बैंड या वाइफ की तरह ट्रीट नहीं कर सकते, आप हर किसी के साथ बच्चों की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। तो इसी तरह आप एक ऑफिस में जाते हैं, वहां एक ऑफिसर है, पुलिस ऑफिसर है, आप स्टोर में जाते हैं वहां है, तो कुछ चीजें सर्टन रूल्स हमें फॉलो करना पड़ता है। सपोज मान लीजिए आप एक मीटिंग में हैं या किसी असेंबली में है, किसी मीटिंग है जहां एक स्पीकर है और आप लिसनर है, ऑडियंस में बैठे हुए सुनने वाले हैं, तो बोलने वाले का अपना कुछ सेट ऑफ रूल्स है, उसी को कहते हैं वक्तृधर्म। बोलने वाले का अपना धर्म होता है कि वो झूठ ना बोले, जो नहीं जानता वो ना बोले, जैसे कि आजकल बहुत लोग बोलते हैं, थोड़ा सा पता हो या ना पता हो बहुत कुछ बोल जाते हैं, ये गलत है। और उसके क्या होता है, आप मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करते रहते हो, तो जितना आपको पता सिर्फ उतना बोलो, उसके प्रॉपर रेगुलेशन है, टाइम पर बोलो, सुश्रोता का भी अपना रूल है कि भाई सुनो, अगर आप कितने भी ज्ञानी हो, विद्वान हो, अगर ऑडियंस में बैठे हो आपको नहीं बोलने का, ये धर्म के खिलाफ है। क्यों? क्योंकि अगर आप धर्म को नहीं मानते हो पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाता है। श्रोता बोलने लग जाए और स्पीकर ना बोले, या स्पीकर भी बोले श्रोता भी बोले, तो कौन सी मीटिंग, कौन सी असेंबली, कौन सी सभा? ध्यान दीजिए, धर्म को ध्यान से दीजिए। तो ये है स्पेसिफिक धर्म जो हम पर्टिकुलर टाइम में, पर्टिकुलर प्लेस में हमें फॉलो करना पड़ता है। मान लीजिए मैं एक पुलिस ऑफिसर, आज की भाषा में कहें या किसी कोर्ट में मैं जज हूं, तो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है जो क्रिमिनल्स आते हैं या जो भी आते हैं, मैं उनको पकड़ूं, पुलिस हो तो मैं उनको पकड़ूं, पनिश करूं, या अगर बहुत ज्यादा बदमाशी है तो कभी कभी उन्हीं को वहीं गोली मारना पड़ता है या मारना पकड़ता है, पकड़ना पड़ता है। तो हिंसा इज वेरी मच पार्ट ऑफ ड्यूटी ऑफ ए पुलिस ऑफिसर। इसी तरह जज है, उसको सबको कुछ ना कुछ तो सबके साथ वायलेंस करता ही करता है, किसी को जेल भेजता है, किसी को फांसी की सजा देती है, किसी को और क्या क्या देता रहता है। वो उसका धर्म है, वो उसको निभाना पड़ता है। पर अगर अचानक पुलिस ऑफिसर या कोई देश का हेड हो, उसके अंदर संन्यास भाव जग जाए, जहां अहिंसा एब्सोल्युटली रिक्वायर्ड है, हिंसा का कोई स्थान ही नहीं है एक सन्यासी के लिए, अगर सन्यासी हिंसा करता है तो महापाप है, पर पुलिस अगर करता है अपने ड्यूटी की, अपनी मर्जी से नहीं, ड्यूटी के कारण करना पड़ता है, जॉब की डिमांड के कारण, तो वो फिर हिंसा, वो अधर्म नहीं होता। इसी को कहते हैं स्वधर्म। वो गीता में आता है ना, स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। क्या भाव है इसका? जिसका जो भी सोसाइटी में, फैमिली में, इंडिविजुअल लाइफ में रोल है, वो तुम्हारा धर्म है। तुम अपना धर्म छोड़ के दूसरे का धर्म करोगे, कितना भी अच्छा लगे, वो खतरनाक है। कोई भी राजा या रूलर, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, बन जाए और कहे कि देखो मैं तो जी मुझे तो अहिंसक हूं, मुझे किसी को सजा देना पसंद नहीं है जी, ये क्रिमिनल है, लोगों को मारा काटा, ये पैसा खा करके भाग गया, करोड़ों रुपए लेकर के क्या करे, छोड़ दो, क्यों, देखो जी मेरे देश में तो कोई हिंसा की कोई सवाल ही नहीं उठता है, मैं बड़ा अहिंसक हूं, मैं जैसे आजकल ये ह्यूमन राइट्स वाले करते, सारा ह्यूमन राइट्स चोरों का होता है, चक्कों का, टेररिस्टों का होता है, पर एक ह्यूमन, एक टेररिस्ट की ह्यूमन राइट बचाते बचाते आप बाकी 100 लोगों के ह्यूमन राइट को इनडायरेक्टली कुचल डालते हो, वो समझ में नहीं आता। अगर आप राजा हो तो आपका कर्तव्य है वो सब कुछ करना जिससे कि आपकी प्रजा, आपके देश के सिटीजन सुखी रहें, शांति में रहें। उनके सुख शांति में भंग डालने वाला हर वो आदमी को आप पनिश करें, तो पनिशमेंट तो वायलेंस है, पर ये आपका कर्तव्य है, वो आपका धर्म है, राजा इसी, ये राजधर्म है। तो कभी कभी धर्म एक दूसरे से कंफ्लिक्ट भी करते हैं, समझदार लोग उस कंफ्लिक्ट के सिचुएशन में भी अपना ठीक ठीक रोल को निभाता है समझदारी के साथ, यहीं पर जो नासमझ है वो राजा बन के सन्यासी की तरह ट्रीट करे, सन्यासी बन के राजा की तरह बिहेव करे, वो अपने भी बर्बादी करते हैं, दूसरों का भी नुकसान करते हैं। एक तीसरी चीज तरह की धर्म है, वो धर्म है, उसको हमारे शास्त्रों में कहा आपद धर्म। सो देर आर सम कंडीशंस अंडर व्हिच धर्म में चेंज इट्स यूजुअल कोर्स। ऐसे बहुत सारे सिचुएशन होता है, कौन सा, डिस्ट्रेस हो, जहां यूजुअल जो प्रैक्टिस रिकमेंडेड है वहां से आप डेविएट कर सकते हैं। आप बीमार हो, हॉस्पिटल में पड़े हो, रोज नहाना धोना, ये शौच शुचिता सफाई रखना, मतलब जिसके लिए हम नहाते धोते हैं, ये धर्म है। पर आप इतना सीरियस बीमार हो, हॉस्पिटलाइज्ड हो, तो आप नहा नहीं सकते हो, आपद धर्म है, ना नहाना भी मंजूर है। कभी कभी ऐसा आपद धर्म आता है जहां हम आपत्ति में पड़ते हैं, चीजों को हम कंप्रोमाइज करते हैं, और वहां उस धर्म में वो छूट मिलता है। धर्म के साथ और एक चीज जुड़ी हुई है और वो है सच्चाई की, ऑनेस्टी की। अगर हमारे व्यवहार में वो ऑनेस्टी नहीं है, हम कुछ भी करें, अच्छा करें बुरा करें, हम कितना भी अच्छा करें, लोगों का भला करते हैं, क्षमा पालन करते हैं, अहिंसा सब सब पालन करते हैं, धर्म के जितने भी फैक्टर्स हैं सब पालन करते हैं, पर अगर मन में वो अनिष्टी नहीं है या वाणी में वो अनिष्टी नहीं है तो बेकार है। कभी आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूट, इंडियन पार्लियामेंट में जाएं तो वो पार्लियामेंट के अंदर बड़े बड़े उनके वाल में, सेंटर के सेंटर वाल में ये लिखा मिलता है, ये वाला श्लोक महाभारत का श्लोक है, नसा सभा यत्र न संति वृद्धाः वृद्धा नते ये न वदन्ति धर्मम्, नासौ धर्मो यत्र न सत्यमस्ति न तत् सत्यम् यच्छलिनानुविद्धम्। वो असेंबली, वो सभा, सभा नहीं है जहां वृद्ध लोग नहीं हो, वृद्ध का मतलब बुढ़ा नहीं, मतलब उसका लिटरेरी ट्रांसलेशन बुढ़ा है, बुढ़ा का मतलब होता है संस्कृत में जो बढ़ चुका है, सिर्फ हम तो बुढ़ा का मतलब समझते हैं जो फिजिकली बढ़ चुका है, कोई ज्ञान से बड़ा है, धन से बड़ा है, किसी भी मामले में बड़ा हो। तो जिस सभा में वृद्ध नहीं है, वाइज पीपुल नहीं है, वो सभा सभा नहीं है, और वो लोग वाइज पीपुल नहीं है, ये नवदंति सत धर्मम, जो धर्म नहीं बोलते, धर्म क्या है, क्या राइट है, क्या रंग है, क्या सही है, क्या गलत है, फेयर नहीं बोलते, इक्वल नहीं, फेयर है ना जरूरी है, जो जैसा है उसको आज इट इज, जिसको जितना चाहिए उतना, और वो धर्म धर्म नहीं है, नासो धर्मो यत्र न सत्यम अस्ति, वो धर्म धर्म नहीं है जिसमें ऑनेस्टी नहीं है, जिसमें सच्चाई नहीं है, और वो सत्य भी, वो सच भी, वो अनिष्टि भी, अनिष्टि नहीं है तो सच भी सच नहीं है। जो छल से झुकता हो, जिसमें डिसेप्शन हो, जिसमें ट्रिकेरी हो, मतलब सच्चा बनने के भी हम ट्रिकी सच्चा भी बनते हैं ना। मतलब आपके किसी के साथ बड़ी अच्छी दोस्ती है, दोनों मिलके खूब गलत काम करते हैं, दोस्त भी खुद गलत काम करता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बिल्कुल राजी हैं उसके साथ, पर एक दिन आपके उसमें झगड़ा हो गया, फिर अगले दिन आप पूरा शुरू हो जाते हैं सुनाना उसकी बुराइयां कर में। और जब वो गुस्सा करते हैं आपके, तो देखो मैंने तो सच बोलता हूं, मैं तो हमेशा सच बोलता हूं, सच कड़वा होता है, तुम्हें चुप गया तो मैं क्या करूं, सच कड़वा नहीं होता है, और तुमने सच भी नहीं बोला, तुमने तो सच को किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए ट्रिक के रूप में यूज किया, ये तुम्हारा सच बड़ा डिसेप्टिव है, तुम सच का बहाना लेकर के सामने वाले को कष्ट देना चाहते थे, तुम्हें सच बोलना होता तो तब भी बोलते, एक साल पहले बोलते, दो साल पहले बोलते जब दोस्ती थी, तुम सच को एक हथियार बना के दूसरों को नुकसान पहुंचाना चाहते, तो ऑनेस्टी बड़ी जरूरी होती है। इसी को बृहदारण्यक उपनिषद यो वै धर्मः सत्यं वै तत् तस्मात् सत्यं वदन्तमाहु धर्मं वदतीति धर्मं वा वदन्तं सत्यं वदत्येतत् एव तदुभयं भवति। ये बृहदारण्यक उपनिषद का मंत्र है। क्या कहता है? जो धर्म है वही सच है, वही अनिष्टि है, और जो इसीलिए सच बोलने वाले को लोग कहते हैं धर्म बोलता है, और धर्म बोलने वाले को लोग कहते हैं सच बोलता है, क्योंकि ये दोनों एक ही है। अब हमने धर्म को एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव में जाना कि धर्म व्यवहार का विषय है, हमारे आचरण की शुद्धता का विषय है, अब मंदिर में कितना पूजा पाठ करते हैं उससे रिलेटेड धर्म नहीं है। अगर तुम्हारा मन करप्ट है, तुम्हारे व्यवहार में शुद्धता नहीं है, तुम्हारे व्यवहार में पवित्रता नहीं है, तुम्हारे मन में, तुम्हारे वाणी में, तुम्हारे तुम्हारे व्यवहार में अगर शुद्धता नहीं, तुम कितना भी पूजा पाठ धर्म कर्म करो सब बेकार है, वो कोई धर्म के कैटेगरी में नहीं आता। और अगर तुम्हारे मन शुद्ध है, विचार शुद्ध है, सब शुद्ध है, तो मंदिर जाते हो नहीं जाते हो मैटर नहीं करता। तो क्या कोई नास्तिक धार्मिक हो सकता है? कोई एथिस्ट है क्या वो धार्मिक हो सकता है? क्या कोई बहुत पूजा पाठ करने वाला, बहुत भगवान को मानने वाला अधार्मिक हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि धर्म व्यवहार का विषय है। तुम्हारे व्यवहार ऐसा अगर नहीं है जो सस्टेनेंस के लिए हेल्प करे, जो सस्टेनर हो, जो अपहोल्डर हो, तुम किसी को मानते हो नहीं मानते हो वो सेकेंडरी है, तुम आस्तिक या नास्तिक हो वो ईश्वर के अलग है, पर तुम्हारे व्यवहार में अगर तुम नास्तिक भी हो, पर तुम्हारे व्यवहार में अगर शुद्धता है, पवित्रता है, तुम्हारे मन अच्छा है, विचार अच्छा है, व्यवहार अच्छा है, अच्छा का डेफिनेशन मैंने दिया, अच्छा वो जो तुम्हारे और ये पूरे जिसका तुम पार्ट हो, पूरे कॉस्मस के इकोसिस्टम के, उसकी सस्टेनशन के लिए, उसको धारण करने के लिए जो हेल्प करता है वो तुम्हारा व्यवहार अच्छा है, जो नहीं करता है वो बुरा है, वो पाप है, वो अधर्म है। तो क्या बहुत पूजा पाठ धर्म कर्म मेडिटेशन करने वाले भी अधर्म या पापी हो सकते हैं? डेफिनेटली हो सकते हैं। और हम दुनिया में देखते हैं हजारों लाखों लोग ऐसे मिलेंगे जो रोज सुबह तिलक लगा करके, माला लगा के, माला जपते हुए दुनिया पूजा पाठ करते हैं। आम लोगों के लिए लगता होगा कि बड़ा धार्मिक है, पर उसके व्यवहार अगर देखते हैं, वो किस तरह बेईमानी करता है, कितना चोरी करता है, चकरी करता है, झूठ बोलता है, लोगों को तड़पाता है, तो शास्त्र के हिसाब से तो ऐसा व्यक्ति कभी भी धार्मिक हो नहीं सकता। पब्लिक की समझ कम होगी, क्योंकि बाहरी आडंबर देख करके आप समझ सकते हो। इनको हमारे यहाँ संस्कृत में एक श्लोक बोलते हैं, बिड़ाल वैष्णव, मतलब कैसे पता चले कि कौन सा धर्म है कौन सा अधर्म है? हम सारे तो ज्ञानी नहीं है, कहीं ना कहीं हमारे लाइफ में भी डिलेमा होता है, कंफ्यूजन होता है, क्या करे क्या ना करे। तो मनुस्मृति का सेकंड चैप्टर का छठा श्लोक कहता है, वेदोखिलो धर्ममूलम् स्मृतिशीले च तद्विदाम् आचारश्चैव साधूना मात्मनस्तुष्टिरेव च। जो तुम्हारी इनर वॉइस है, जो तुम्हारे अंदर से जो आवाज आती है, वो तुम्हारे आत्मतुष्टि है। किसी को करने पर, मान लीजिए तुमने कोई शास्त्र नहीं पढ़ा, कोई वेद नहीं जानते हो, शास्त्र नहीं जानते हो, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं जानते हो, कोई रूल्स रेगुलेशन कुछ भी नहीं जानते हो, कोई किसी की बड़े आदमी की जीवनी भी नहीं जानते हो, पर ईश्वर ने और एक शक्ति दी है कि तुम्हें सही और गलत समझने की, वो तुम्हारा इनर वॉइस, तुम्हारे आत्मा की आवाज। कोई भी काम हम करते हैं, अच्छा या बुरा करते हैं, हमें वो उसी समय फील होता है, अच्छा कर रहा हूं कि बुरा कर रहा हूं। वो अलग बात है कि कुछ दिनों के बाद वो भी दब जाता है, जब आपकी ब्रेन वॉश हो जाए एक पर्टिकुलर चीज को मानने या ना मानने के प्रति, फिर धीरे धीरे आपकी अच्छाई बुराई की फीलिंग भी बदल जाती है। पर अगर आप ब्रेन वॉश नहीं है, एक नॉर्मल ह्यूमन बींग है, तो आप किसी को भी हेल्प करते हैं, किसी भी अनजान आदमी को हेल्प करते हैं विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, आपको अच्छा फीलिंग होती है, आपको लगता है कि आपका शरीर लाइट हो गया है, आपका मन बल का हल्का हो गया है, यू आर फीलिंग समथिंग गुड, गुड फील करते हैं। जब भी आप किसी के साथ ट्रिक करते हैं, किसी को दुख पहुंचाते हैं, किसी को साथ आप कोई ऐसी ट्रिक परेशान करते हैं, तो आप खुद फील करते हैं कि ये गिल्टी फीलिंग करते हैं। तो हर ईश्वर की दी हुई एक व्यवस्था है हमारे अंदर, आत्मतुष्टि, जिन चीजों को करने से अंदर से खुशी मिलती है। फाइनली आप देखेंगे, आप पकौड़ा खाते हैं, समोसा खाते हैं, खाने के बाद आप गिल्टी फीलिंग करने लग जाते हैं, इसका मतलब है कि सचमुच आपको नहीं खाना चाहिए था, पर आप लालच के कारण खा रहे, मन के कारण खा रहे। ये जो आत्मा, आपने अगर नहीं खाया, किसी पार्टी में गए और इतना बढ़िया बढ़िया खाना था, आपने नहीं खाया क्योंकि आप कन्विंस्ड है कि मैं बीमार हूं, मेरे पर्टिकुलर वे ऑफ वो खाने का तरीका है, मैं ये, मेरे लिए ये ठीक नहीं है, और बहुत ऐसा खाना था कि अट्रैक्टिव था, आपको वो खींच रहा था अपने, और बड़े बड़े कितने सारे मिठाइयां हैं, आइसक्रीम है, खाने थे, आपको खींच रहा था, पर आप उससे पिघले नहीं है, आप डटे रहे, मन कर रहा था, मन को रोका। एट द एंड ऑफ द डे जब आप पार्टी से बाहर आते हैं, आप अंदर से एक सुकून सा फील करते हैं कि मैंने कुछ अचीव किया, मैंने नहीं खाया जो मेरे लिए नुकसान होता। यह आत्मतुष्टि है, ये धर्म का सबसे बढ़िया और सबसे नेचुरल पैरामीटर है आंकने के लिए कि मैं सही हूं या गलत हूं। उससे थोड़ा ऊपर जाना हो, और वो कहते हैं जो भी हमारे आसपास जो ज्ञानी लोग हैं, अच्छे लोग हैं, सदाचारी, जिनका व्यवहार अच्छा है, जिसको हम सिंपल भाषा में कहते हैं महात्मा है, महान आत्मा वाले हैं, उनके व्यवहार से हम सीख सकते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर उसमें भी आपको ठीक ठीक ना बने और ऊपर जाना है, तो स्मृति, लॉ टिप्स, प्राचीन काल में मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, गौतम स्मृति, अजी हजार, जैसे आजकल के हिसाब से कंटेम्प्रेरी वे में आप पूछे तो आजकल के स्मृति शास्त्र कौन है, धर्मशास्त्र, हर देश का जो लॉ है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो वहां के रूल्स और रेगुलेशन है, वो वहां के धर्मशास्त्र है, उन्हीं के हिसाब से जीवन जीना। और सबसे ऊपर वेद शास्त्र, वेद श्रुति, वेदोखिलो, वेद समस्त ज्ञान का फाउंटेन है, सोर्स ऑफ ऑल टाइप ऑफ नॉलेजेस है, वेद अंतिम है, जो वेद में, जो वेद के अनुकूल है वो सब अच्छा है, जो वेद के अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, वो खराब। जो वेद तक नहीं पहुंच सकते, वो रूल्स रेगुलेशन धर्मशास्त्र तक पहुंचे, धर्मशास्त्र तक नहीं पहुंच सकते, बड़े लोगों के, महात्माओं की जीवनी से, बायोग्राफी से सीख करके करे, वहां नहीं पहुंच सकते, अपने इंडिविजुअल जो भी तुम्हारा जो इनर सेंस है, उससे अपने आप को बदलने की कोशिश करे। जरूर ध्यान रखिए एक और चीज, जब अगर हम धर्म का पालन नहीं करते तो होता क्या है, मनुस्मृति कहता है, महाभारत में भी रिफ्लेक्ट होता है, धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः तस्मात् धर्मो न हन्तव्यो मानो धर्मो हतो बधित। ये बहुत क्रिटिकल चीज है, कोई भी इंडिविजुअल जब लाइफ में धर्म का पालन नहीं करता, वो न पाला हुआ धर्म खुद की बर्बादी करता है, वो फैमिली जो धर्म का पालन नहीं करता, वो न पालन किया हुआ धर्म उस फैमिली का बर्बादी का कारण होता है, और वो सोसाइटी, वो नेशन, और वो पूरा का पूरा प्लानेट, जहां जितना धर्म का पालन होता है वो पाला गया धर्म आपकी रक्षा करता है, और धर्म जितना धर्म की बर्बादी की जाती है वो नष्ट धर्म आपका बर्बाद करता है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जिस तरह आज हम ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज देखते हैं, इसका रीजन क्या है? एक कलेक्टिव वे में पूरी प्लानेट के रहने वाले सारे लोगों ने कलेक्टिव वे में अधर्म किया, वो कॉस्मिक लॉ को तोड़ा, वो इंडिविजुअल ग्रीड या नेशनल ग्रीड या सोशियल ग्रीड को जस्टिफाई करने के लिए इस प्लानेट को, नेचर को एक्सप्लोइट किया, जो कि अधर्म है, जिसका रिजल्ट हम सब मिलकर भोगते हैं। इसीलिए द कंक्लूजन, धर्म हमारा व्यवहार का विषय है, धर्म हमारे आचरण का विषय है। अगर हमारा आचरण शुद्ध है, मन शुद्ध है, व्यवहार में शुद्धता है, तो हम धार्मिक है। नहीं है, आप कुछ भी करते रहिए, आप हिपोक्रेट कहलाएंगे। पब्लिक में आप कितने भी धार्मिक बनते फिरे, पर ईश्वर की व्यवस्था में आप बड़े पाखंडी हैं, आप हिपोक्रेट हैं। धर्म का दूर दूर का रिश्ता नहीं। इसीलिए धर्म का संबंध व्यवहार से। अगले बार जरूर सुनिएगा, हम डिस्कस करेंगे रिलीजियन क्या है, संप्रदाय पूजा पाठ सिस्टम क्या है, उसकी क्या इंपोर्टेंस है, धर्म के साथ क्या रिलेशन है। फिर हम सुनेंगे स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता क्या है। आज के लिए इतना, बहुत बहुत धन्यवाद।